इंडिया बोल 3 सितंबर शनिवार, सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। मजदूर संगठनों का दावा, बढ़ती महंगाई के आगे कुछ भी नहीं है, न्यूनतम मजदूरी में 40% का इजाफा। सरकार का दावा, मजदूरों की जायज मांगों पर हो रहा है विचार। निजीकरण और सुधारों को लागू करना वक्त की मजबूरी। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत इस वक्त हड़ताल का नुकसान झेलने की स्थिति में है? इंडिया बोल में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करिए 1811-7000 या 1811-7001 पर। चर्चा अब से बस कुछ ही देर में, पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत प्रशासित कश्मीर का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को हुर्रियत समेत सभी पक्षों से बातचीत का सुझाव दिया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल कश्मीर घाटी के दौरे पर जाएगा। केंद्र सरकार ने आज इस दौरे को लेकर सभी दलों की बैठक बुलाई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के हवाले से बताया है कि उन्होंने पैलेट गन पर रोक लगाने और सिविलियन इलाकों से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने का सुझाव दिया। बीती 8 जुलाई को एक मुठभेड़ में चरमपंथी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर घाटी में अशांति की स्थिति है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से बर्खास्त किए गए संदीप कुमार ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संदीप कुमार के खिलाफ एक महिला ने दिल्ली में बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक ये वही महिला है जिसके साथ संदीप कुमार एक सीडी में कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। संदीप कुमार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में महिला कल्याण मंत्री थे। सीडी सामने आने के बाद बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया था। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले अमेरिका और चीन ने बीते साल पेरिस में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। दोनों देशों ने चीन में हो रही G20 देशों की बैठक के पहले ये घोषणा की। पेरिस सम्मेलन में दुनिया के अधिकतर देशों में इस बात पर सहमति बनी थी कि वो कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे जिससे वैश्विक तापमान में 2% से अधिक इजाफा न हो। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, तमाम दूसरे मुद्दों पर हमारे मतभेदों के बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर साथ काम करने की हमारी इच्छा पूरी दुनिया को प्रेरित करेगी। दुनिया के स्तर पर प्रगति की दर धीमी हो सकती है, लेकिन एक साथ आगे बढ़ते हुए हम साबित कर रहे हैं कि ये संभव है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और वियतनाम की रणनीतिक साझेदारी से भविष्य के संबंधों का रास्ता तय होगा। मोदी ने कहा कि इससे द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा, गति और अर्थ मिलेगा। वियतनाम के एक दिन के दौरे पर गए मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर दस्तखत हुए। मोदी वियतनाम से चीन रवाना हुए हैं जहां वो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तुर्की मीडिया से मिली खबरों के मुताबिक तुर्की सेना के कुछ और टैंक सीरिया में दाखिल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी रेडियो पर इंडिया बोल में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। फोन लाइन खुल चुकी है, उठाइए फोन और बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या भारत इस वक्त हड़ताल का नुकसान झेल सकता है। स्टूडियो में इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय और टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के महासचिव तपन सेन। आप दोनों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले, इससे पहले कि मैं किसी श्रोता का फोन कॉल आपको सुनाऊं और उनकी बातचीत सुना, उससे पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा ब्रजेश जी कि ये जो बातचीत हो रही है कि 40% का इजाफा हुआ है मजदूरी में, न्यूनतम मजदूरी में, उसके बावजूद ये हड़ताल हो रही है, आप क्या सोचते हैं ये हड़ताल होनी चाहिए?
वास्तव में इजाफा हुआ ये बात सच है, लेकिन जो वैल्यू आई है 350 रुपये, वो आज के जनजीवन में या आज का जो सामाजिक परिवेश बना है उसमें मजदूर का जो परिवार है ये उसके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मजदूर का आवाज़ उठाना बड़ा स्वाभाविक है।
आपने जो बात कही उसी तरह की बातचीत जो है वो लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने इस हड़ताल का आह्वान किया था। C2 के तपन सेन हमारे साथ मौजूद है। तपन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, आपने सुना भी है जो भारतीय मजदूर संघ है उसके महासचिव की बात, आप क्या कहते हैं कि ये जो इजाफा हुआ है वो कितना सही है?
ये जो ब्रिजेश जी का बारे में बात में हम ये बात में सहमत है, जो इजाफा हुआ है वो सिर्फ पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके साथ और एक बात भी है, किसको लिए इजाफा हुआ है। श्रम मंत्री का बोलने का मुताबिक ये इजाफा हुआ है जो केंद्रीय सेक्टर में जुड़े हुए, जिसको सेंट्रल स्फीयर बोलते हैं, उसके मजदूर, और लेबर मिनिस्टर के बयान के अनुसार 70 लाख सारे मजदूर आंदोलन, सारे संगठन मिलके, ब्रिजेश जी का भी संगठन इसके साथ शामिल है, हमने जो मिनिमम वेज बढ़ोतरी का मांग किया वो 40 करोड़ मजदूरों के लिए, पूरा देश का मजदूरों के लिए, और 70 लाख वो उसी में जिसका इजाफा हो रहा है वो कोई शतांश में नहीं आते हैं। सरकार ने बहुत माने उसका कारण उसका मालूम है, वो ये बात को खुलासा नहीं कर रहा है। जब ये लेके सवाल किया गया तब संबंधी ने एक बयान जारी किया, वो बयान से निकाल के आता है जो इजाफा हुआ उसको चलते सिर्फ 70 लाख मजदूर के फायदा होगा सेंट्रल स्फीयर में, लेकिन ये भी पूरा सही नहीं है। कहे सेंट्रल स्फीयर का जो 70 लाख मजदूर है उसका एक बड़े हिस्से सेंट्रल स्फीयर का मजदूर, इसका एक बड़ा हिस्सा इससे ज्यादा मजदूरी लेते हैं ऑलरेडी थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, इसके अंदर जो ठेका का जो हिस्सा है उसका लिए ये लागू होगा, और वो भी 170 लाख से भी कम है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, जो पिछले 6 साल तक ब्रिजेश जी के साथ देश के सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो मांग लेके परसू कर रहा है वो देश के सारे मजदूरों के लिए, और जो इजाफा का बात संबंधी और सरकार कर रहा है वो उसका 1% से भी कम एक छोटा हिस्से के लिए। और सिर्फ मंत्रियों का भाषण में तो बात नहीं होता है, इसको अगर सारे देश में लागू करना है, लेबर इज ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट, उसका लिए जो कदम उठाना है ये कोई बात मंत्री के जो जवान में।
जी तपन जी आप कह रहे हैं कि इसको लागू कैसे किया जाएगा, एक तो वैसे ही बहुत कम लोगों पर इसका असर होगा। ब्रजेश जी कहना चाह रहे हैं, जी ब्रजेश जी की बात सुन लेते हैं।
इसमें हमारा ये कहना है कि ये जो तपन जी कह रहे हैं कि भाई 70 लाख लोग प्रभावित होंगे, वास्तव में सेंट्रल एक मिनिमम फ्लोर तय करता है, जैसा तपन जी ने बताया स्टेट गवर्नमेंट्स लेजिस्लेट करती हैं, वो मिनिमम बेस तय करती हैं, जो उनके राज्य में काम करने वाले निजी क्षेत्र और बाकी के सब लोग उनको प्रभावित करता है। तो सेंट्रल एक मिनिमम फ्लोर तय करता है कि इससे कम कोई ना रखे
जी।
तो इसका कवरेज, इसका दायरा, आज भी देश में बहुत सारे ऐसे राज्य और स्थान हैं जहां 350 से बहुत कम मिलता है, मीन जो 40% बढ़ाया उन्होंने 46% तो पहले से बढ़ा है, अभी भी कई राज्यों में इससे काफ़ी कम है। तो राज्य इससे ऊपर लाएँ, इससे नीचे ना रखें, सेंटर का इस प्रकार के का अप्रोच रहता है
जी। हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए।
जी मेरा नाम प्रेम कुमार सिंह है, बंदवार बेगूसराय बिहार।
प्रेम कुमार जी बेगूसराय से आप बोल रहे हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
सर सबसे तो प्रधान बात है, सरकार में बैठे हुए जो भी लोग हैं वो बड़े बड़े लोग से चंदा लेकर के जाते हैं, उनको तो सिर्फ उनका स्वार्थ सिद्धि करने का मन रहता है, मजदूर और किसान से किसको मतलब है।
लेकिन वोट तो मजदूर और किसानों के पास में है, चंदा उनके पास ना हो वो लोग अगर अपने जी,
और यहाँ वादा भी करते हैं वहाँ जाने के बाद तमाम वादे भूल जाते हैं और सिर्फ अपना स्वार्थ इनको ध्यान में रहता है।
तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए?
मजदूर जो है संगठित मजदूर यूनियन जो है वो सभी पार्टी अपने आप बना लिए हैं कुछ नेताओं को लगा कर उसमें, ताकि वो उनके स्वार्थ में बात करें, मजदूर के स्वार्थ में बात ना करें। निजीकरण तो होगा ही, क्योंकि उन्हीं के टुकड़ों पर तो ये नेता लोग पलते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों पर, तो ये तो उन्हीं के स्वार्थ की बात करेंगे, मजदूरों के स्वार्थ और किसान के।
अच्छा प्रेम कुमार जी, एक बात बताइए कि जो हमारा बुनियादी सवाल था कि क्या हड़ताल का जो नुकसान होता है वो इस वक्त भारत झेलने की स्थिति में है, आपको क्या लगता है हड़ताल होनी चाहिए?
सरकार को क्या मतलब है इससे, वो तो हड़ताल जो भी होगा वो तो किसान मजदूर पर ही पड़ेंगे।
यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं।
वो उनको क्या मतलब है, वो अपना तो वेतन बढ़ाते जा रहे हैं, वो आसमान छू गया उनका वेतन
जी।
और यहाँ मजदूर और किसान को मान लीजिए भूखमरी का शिकार है, आत्महत्या लोग कर रहे हैं, इस पर वो कभी नहीं सोच सकते हैं
जी। प्रेम कुमार
बोलने के कुछ भी नेता लोग बोलते हैं
जी। प्रेम जी बहुत शुक्रिया, इनकी बात पर जवाब हम आप दोनों से पूछेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और श्रोता भी हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए।
नमस्कार सर।
नमस्ते, अपना नाम बताइए।
असलम हुसैन प्रिंस, मैं सौर सीतामढ़ी बिहार से।
असलम हुसैन जी सीतामढ़ी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
ये कहना है कि महंगाई वाकई में जमीन से आसमान छू गया
जी।
वाकई में हमारे जो श्रोता भाई बोल रहे थे, वाकई में ये लोग तो सब मजदूर ठीक है, कोई बात करते नहीं है
जी,
ये सब अपना पॉकेट गर्म करते, चाहे मजदूर यूनियन के नेता हो, ये लोग तो वाकई में सभी तो फैक्ट्री वाले काल कारखाना वाले से मिले होते, उनको लाखों करोड़ों मिलता है, और जब उनको पैसा घट जाता है तो हड़ताल करा देते हैं। हालांकि हड़ताल होना भी जरूरी है ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे।
आप मानते हैं कि हड़ताल होना जरूरी है ताकि सरकार तक
हड़ताल इसलिए होना जरूरी है कि आजकल की सरकार सर ये है कि बगैर हड़ताल के कोई काम होता ही नहीं है, आप देख लीजिए सर।
लेकिन आप ये भी क्या, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ, क्या आप जानते हैं कि एक दिन के हड़ताल से, एक अनुमान है, ये कोई बहुत पक्का तस्वीर तो नहीं देखता, लेकिन एक अनुमान है कि करीब 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के रूप में जो है ये नुकसान, रुपए नुकसान हुआ है एक दिन के हड़ताल में, ऐसा अनुमान जताया है जो संगठन है, व्यापारिक संगठन है, उनका ये कहना है। हम आपकी आपके प्रश्न पर जवाब पूछेंगे मजदूर संगठन के जो हमारे साथ बैठे हुए हैं नेता, उन लोगों से भी, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं। जी अपना नाम बताइए। आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हेलो
जी, अपना नाम बताइए।
जी मेरा नाम मनवर हुसैन है, मैं असम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
जी बताइए हुसैन साहब, क्या कहना चाहते हैं आप?
जी मेरा हिसाब से ये जो हड़ताल हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है इसमें किसान इतना गरीब है, तो मेरे ख्याल से जो इंडिया का गवर्नमेंट है वो किसानों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये यूनियन है, क्योंकि उनका तो तनख्वाह मिल रहा है महीने के अंत, मतलब महीना खत्म होने से उनका तनख्वाह मिलता है, लेकिन जो गरीब है, जो किसान भाई है, वो तो दिन के दिन गरीब ही होता जा रहा है।
जी जी, तो आपको क्या लगता है हड़ताल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
नहीं होनी चाहिए, मेरे तो बिल्कुल
आप मानते हैं कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब आपकी इस राय के लिए। मैं सबसे पहले ब्रजेश जी के पास आता हूँ और ब्रजेश जी से पूछता हूँ कि आपने ये बात सुनी, कुछ लोगों ने कहा कि हड़ताल होनी चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लगता है ये तरीका कितना कारगर है? आप तो हड़ताल और इन सब चीज़ों के बारे में, इस बार आप नहीं थे हड़ताल में, लेकिन आमतौर पर तो आप भी इनमें साथ में होते हैं।
मैं तीनों श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि बड़ी जागरूकता के साथ इन्होंने इस विषय को लिया है। जो पहला प्रश्न प्रेम जी ने पूछा था, उनके मुताबिक या जो भी बाद में मनोहर हुसैन साहब पूछ रहे हैं, ट्रेड यूनियन ने हड़ताल करने के लिए कोई पेशेवर लोग नहीं हैं, हमारी बात सुनी जाए, सरकार सामान्यतया प्रक्रिया है, हड़ताल हम आखिरी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हड़ताल पर जाने से पूर्व कई और माध्यमों से हम सरकार को ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। सरकार संवेदनशीलता के साथ अगर पहले ही कार्यवाही पर अमल करे, सुनना शुरू कर दे, तो हड़ताल की नौबत नहीं आती।
आप इस बार हड़ताल में क्यों शामिल नहीं?
हमारा मानना है कि हड़ताल आखिरी हथियार है, रोज उसका इस्तेमाल करना आखिरी हथियार को भी बिना ताकत का कर देना रहता है। हम जब आवाज उठाते हैं कि सरकार सुने, इस बार ऐसा हुआ पिछले दो बारों से, और पहली बार ऐसा देश में हुआ 70 साल की आज़ादी के बाद कि केंद्रीय यूनियनों के मांग पत्र पर पॉइंट बाई पॉइंट सरकार ने डिस्कशन किया। सामान्यतः यह प्रक्रिया फैक्ट्रीज में, कारखानेज में, कारपोरेट्स में चलती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल ने पिछली बार उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश की उनकी अध्यक्षता में, तो विगत वर्ष उन्होंने कुछ मुद्दों पर सहमति जनाई। देखिए हम मांग पत्र देते कि हमको सुनिए नहीं तो हड़ताल करेंगे, सरकार ने एक पहल करी, सुना, उन पर कुछ कार्यवाही प्रारंभ करी। इस बार भारतीय मजदूर संघ हड़ताल में इसलिए नहीं गया कि उन कुछ मुद्दों में से सरकार ने कुछ पर कार्रवाई कर दी, लागू करने का प्रयास किया, तो इसलिए हमको लगा कि हमने जो
जी जी
काल दी
मैं,
थी
मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। तपन सेन जी हमारे साथ है। तपन जी, आपने इनकी बात भी सुनी और श्रोताओं की बात भी सुनी, आप क्या कहेंगे? आप तो हड़ताल कराने वालों में थे, आपको क्या लगता है?
हड़ताल के जो लास्ट रिसोर्ट है, आखिरी मौका है, लेकिन बहुत सोच विचार करके इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम सहमत है हमारे जो कलीग है ब्रिजेश जी के। बात यह है जो सरकार ने जो कार्रवाई की इसी में हम सहमत नहीं है। सरकार ने मुंह जबानी बोली हाँ हाँ ये हम विचार करेंगे, लेकिन पिछले एक साल तक कोई एक्शन नहीं लिया इसी के ऊपर, कोई बात पर। और जो एक्शन जो लिया वो भी दिखावा जैसा, जैसा 350 रुपया किया 70 लाख के लिए, हमारे मांग 40 करोड़ के लिए। अगर 350 रुपया 40 करोड़ के लिए करते थे तो मतलब आते थे। और जो फ्लोर लेवल के बात ब्रिजेश जी बोल रहा है, ये फ्लोर लेवल एक सेंट्रल मंत्री बोल देने से नहीं होता है। लेबर इज ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट, आपको मिनिमम वेजेस एक्ट में बदलाव लाके ये फ्लोर लेवल को इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये ना करते हुए, और ये बात मंत्रियों ने, अरुण जेटली जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेबर मिनिस्टर ने जो बयान दिया, लिखित बयान, कहा भी ये फ्लोर लेवल का बात नहीं है। जो इट इज ओनली फॉर दैट 70 लाख, वो पूरा 70 लाख नहीं, इसीलिए जो 70 लाख के बहुत ज्यादा मजदूर, 70 लाख के एक बड़ा हिस्सा इससे बहुत ज्यादा ऑलरेडी कमाता है थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, एक नंबर। दो नंबर ये है जो बोल रहे हैं हड़ताल के लिए जो नुकसान हो रहा है 18,000 करोड़, एसोचैम ने बताया, मेरा लगता है वही आप कोट कर रहा है। हड़ताल के लिए, एक दिन हड़ताल के लिए जो 18,000 करोड़ नुकसान हुआ, ये साल के अंदर मजदूरी मेहनत करके वो पूरा कर देगा, कर देता है सब जगह में, अगर इंडस्ट्री वाइज अगर आप ले जाइए तो। लेकिन सरकार जो 5,00,000 करोड़ रुपया एक कॉरपोरेटों को जो मैंने टैक्स असेसमेंट किया वो लेता नहीं उससे। अरे कॉरपोरेट लोग जो बैंक के लोन लेके 8,50,000 करोड़ रुपया विदाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कर दिया, ये नुकसान के बारे में हम लोग बोलते रहे, ब्रिजेश जी भी बोलते रहे, लेकिन सरकार के कोई कदम आज तक नहीं उठाया। तो हड़ताल करना भी मजदूरों की एक मजबूरी है
जी जी,
लेकिन
जी,
जब जरूरत होता है अगर वो नहीं करेगा तो मजदूर बंधुआ मजदूर बन जाएगा। और ये सरकार श्रम कानून को बदलते हुए हड़ताल के अधिकार भी छीनना चाहता है मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए। जो 12 सूत्री मांग है ट्रेड यूनियनों का, उसमें ये भी एक प्रधान मुद्दा है, जिसी में सरकार कोई बात नहीं बोला, रादर आगे चलने के लिए एक पर एक और यूनिलैटरल कदम उठा रहा है।
जी तपन जी, हम आपके पास जी तपन जी,
इसी परिस्थिति में हड़ताल छोड़ के हमारे सामने कोई रास्ता नहीं
जी। मैं हमने आपकी बात सुनी, हम आपके पास फिर आएंगे। इस बीच में हमारे साथ कुछ और श्रोता जुड़ रहे हैं जी, अपना नाम बताइए।
मोहम्मद शफी
साहब जम्मू कश्मीर से, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
सर पहली बात तो मेरी, सर आपको नमस्ते हो
जी, नमस्ते।
पहली बात तो ये है कि हमारा देश जो है हड़ताल को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हमारा देश जियोग्राफियाई लिहाज से जो है ये बहुत कठिन है, क्योंकि कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं गरीब है जनता है, हड़ताल को बर्दाश्त नहीं करता। नंबर दो, मजदूरों की हड़ताल जायज भी है, क्योंकि उनको कोई शख्स देखता नहीं है। जहां पर मालिया 10 अरब रुपया लेकर खजाने से भाग गया, उसको नहीं पूछता कोई, लेकिन गरीबों को क्या कर रहा है कि अगर 300 रुपया 200 देना तो उनकी वो कटौती करते हैं बैंक से, और उनको जायज तनख्वाह नहीं देते, और हमारे खजाना को लीडरों ने भी लूटा, उद्योगपतियों ने भी लूटा, हर खजाने को देश को लूट कर खत्म कर दिया। लिहाजा इन गरीबों की आवाज को सुनना चाहिए। लिहाजा मैं एक अपील करना चाहता हूँ, हड़ताल के बजाय जो खजाना मंत्री है इनकी जायज मांग को सुनना चाहिए और इनको देना चाहिए, जरूरी चीज है। लेकिन हमारा मुल्क हड़ताल के जो हड़ताल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कोई बीमार है, कोई तकलीफी है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, गाड़ियां बंद होती हैं, तो पूरा देश जो है वो ठप हो जाता है। लिहाजा हमारा देश सोने के चिड़िया है, लेकिन लीडरों ने खा कर खत्म कर दिया, और जो पतियों ने खा के खत्म कर दिया, और इन लोगों ने सत्यानाश कर दी देश की। इसलिए मजदूरों की हड़ताल के बारे में सोच विचार खजाना मंत्री को करना जरूरी चाहिए।
जी मोहम्मद शफी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इस पूरी बातचीत के लिए। बड़ी उत्तेजित होकर के आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ कुछ और श्रोता जुड़ रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए।
अब्दुल अजीज भट्ट जी, जम्मू कश्मीर।
अफजल अजीज भट्ट साहब जम्मू कश्मीर से, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप।
देखिए जी, कोई भी जो हड़ताल है वो देश के लिए भी और मजदूर के लिए, किसान के लिए, आम आदमी के लिए ये नुकसानदेह है। लेकिन सरकार को चाहिए कि ये जो 350 रुपए है ये बहुत कम है, इनको कम से कम 500 रुपए करना चाहिए। और जो आम लोग ये गवर्नमेंट के जो सरकारी ये मजदूर होते हैं, ये नुकसान उनका है। बाकी जो लोग यहाँ स्टेट में या किसी जगह प्राइवेट लोगों के पास काम करते हैं, वो 500, 800, 600 वो बहुत पैसा लेते हैं। लेकिन जी, सरकार की खानों में जो कोयला निकालते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, 350 में उनकी दुआई पूरी नहीं होती है। इसलिए इनकी जो वेजेस है डेली 500 से कम का तो आज इस दौर में
होना ही नहीं चाहिए। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपकी इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ उमेश जी जुड़ रहे हैं डिब्रूगढ़ से। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप।
सबसे पहले तो असम के चाय बागान से, केंदुगुई चाय बागान से बीबीसी का और हमारे विशेष अतिथि का स्वागत है।
जी जरूर, बहुत शुक्रिया, आप बताइए क्या कह रहे हैं।
जी जी सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर जो है मिनिमम वेजेज पर मतलब मजबूरी में काम करवाया जाता है। अभी हमारे यहाँ 126 रुपए है प्रतिहारी।
अच्छा अच्छा, आपको सिर्फ 126 रुपए मिलते हैं।
जी हाँ, 126 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं।
तो आपके यहाँ क्या यूनियन नहीं है, आपके यहाँ क्या मजदूर संगठित नहीं है?
अभी अभी हमारे यूनियन वाले भाई साहब ने अभी कहा, अभी एक हमारे श्रोता भी कहे थे
जी,
यूनियन वाले हैं उनको उनका उनका हिस्सा मिलते रहता है और वो लोग जो है बीच बीच में आवाज उठाते हैं, लेकिन वो
असर नहीं होता उसमें।
लोगों को जो चंदे के रूप में जो उनको देना पड़ता है महीना के लिए, उस हिसाब से वो कभी कभी आवाज उठा लिया करते हैं।
जी जी, लेकिन उस पर कुछ अमल नहीं होता, उससे कुछ बात नहीं बनती। 126 रुपए तो बहुत कम है, मतलब जो पुरानी
लोग सुन रहे हैं आज।
जी जी उमेश जी,
126 रुपए प्रतिदिन का है।
जी उमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। मैं सबसे पहले ब्रजेश जी से ही पूछूंगा कि आपने पूरी बात सुनी। एक तो सबसे पहले ये जो लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है वो उद्योगपतियों की सुनती है, उनके लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज जो है वो माफ़ कर देती है, उनको टैक्स में छूट देती है, लेकिन जब मजदूरों की बात आती है तो सब जगह सन्नाटा।
ये बात काफ़ी हद तक सच है कि आज देश में गरीब और मजदूर के बारे में सोचने का काम जो राजनीतिक नेतृत्व को है, तो राजनीतिक पार्टियां चलती ही कॉरपोरेट्स के चंदों से हैं, तो राजनीतिक पार्टियां जो कॉरपोरेट के चंदों से चलती हैं और ट्रेड यूनियनें जो राजनीतिक पार्टियों की कोख से पैदा हैं, इनके पहले मास्टर जो हैं जिनकी सेवा इन्होंने करना वो कॉरपोरेट्स होते हैं सीधे। आज बहुत बड़ी जो त्रासदी है उसका कारण है, जब तक ये अर्थव्यवस्था में इसका मॉडल नहीं बदला जाएगा, जब तक आमूलचूल परिवर्तन पैराडाइम शिफ्ट नहीं आएगा इस अप्रोच में। देखिए, उद्योग इसलिए प्रारंभ किए गए थे कि वो मनुष्यों के लिए क्वालिटी ह्यूमन लाइफ क्रिएट करें। आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उद्योगों को चलाने के लिए मजदूर रास्ते में आता है तो उसको निकाल देने की, हटा देने की या बाहर कर देने की सारी स्थिति बन गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्राइम कंसर्न हो गया, ईज ऑफ लिविंग जो होना चाहिए, जो मनुष्य को केंद्र में रखकर नीतियां बननी चाहिए,
आपका ध्यान वो नहीं बन रही है। मैं आपका ध्यान उमेश कुमार जी की उस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं जो हमारे कुछ और श्रोताओं ने भी कही कि जो मजदूर संगठन हैं या मजदूर संघ हैं वो भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो भी जो है वो बिचौलिए के तौर पर काम कर रहे हैं और वो मजदूरों के हक में काम नहीं कर रहे हैं।
ये आज काफी सच्चाई है, इसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
लेकिन आप मजदूर संघ को मान रहे हैं, आप उसको बदलने के लिए क्या कर रहे हैं?
क्योंकि आप भी मजदूर संघ हमने प्रयास किया है, ऐसे मजदूर संगठन जिसका नेतृत्व मजदूरों कर्मचारियों उन्हीं लोगों के हाथ में है, वहां इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं है। जहां जहां मजदूर संगठनों का नेतृत्व बाहरी लोग कर रहे हैं वो इस प्रकार के बिचौलिए का या जो ये गलत भूमिका में आ रहे हैं जिन्होंने एक पवित्र मजदूर आंदोलन को बर्बाद या बदनाम करने का प्रयास
जी,
किया।
मैं तपन जी से भी इसी बात पर उनकी राय जानना चाहूंगा। तपन जी, आपने सुनी हमारे श्रोताओं की आवाज और उनकी बातचीत।
एक एक तरीका का सिनिसिज्म है जो मजदूर आंदोलन मजदूरों को हक में कम नहीं करता है। मजदूर आंदोलन में अभी तक जितने अधिकार अर्जित किया गया है मजदूर आंदोलन के चलते ही हुआ, जितने कानून बना श्रम कानून जिसको अभी बदलने का कोशिश हो रहा है ऊपर से नीचे तक, ये मजदूर आंदोलन के चलते ही आया। कोई सरकार ने दया करके दिया नहीं मजदूरों को, ये तो एक बात है। दो नंबर, हम एग्री करते हैं ब्रिजेश भाई से जो बोल रहे हैं पैराडाइम शिफ्ट जरूरत है, और ये पैराडाइम शिफ्ट वाली प्रस्तावना भी हमारे 12 सूत्री मांग के अंदर है। हमने बोला है महंगाई के लिए अनाज का बाजार में सट्टाबाजी बंद करो, ये पैराडाइम शिफ्ट वाला प्रस्ताव है। हमने बताया जो ये पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन मत करो, ये पैराडाइम शिफ्ट वाला मामला है। हमने बोला है डिफेंस सेक्टर में बैंक फिनांस इंश्योरेंस और रिटेल ट्रेड में FDI लाना बंद करो, ये पैराडाइम शिफ्ट वाला मुद्दा है। अगर ये मांग ड्रॉप हो जाता है 12 सूत्री मांग से, सिर्फ 8 मांग रह जाता है जो श्रम मंत्री ने बोला, जो बोथ द साइड वी हैव एग्रीड टू ड्रॉप 4 डिमांड्स। आई डोंट नो ब्रिजेश जी एग्री किया कि नहीं, बट द फैक्ट इज दैट अगर ये बात ड्रॉप हो जाता है तो पैराडाइम शिफ्ट वाला बात नहीं रहता है, तब बाकी सब आर्थिक मांगो भीख मांगने वाली बात रह जाता है। जब भी हमारे मांग को पॉलिसी के साथ जोड़ के हम मांग उठाते हैं तब वो मांग होता है, वो लेके बार्गेनिंग होता है, वो लेके नेगोशिएशन होता है। हमने चाहते हैं एक्शन के जरिए और दूसरे चरणों को में जो हमारे मजदूरों का जो संघर्ष है इसके जरिए सरकार को इस बातों पर नेगोशिएशन आने के लिए मजबूर करना, यही एक मजदूर आंदोलन को सामने रास्ता खाली है, वही रास्ता में चल रहा है। और जो आसाम के जो साथी बोल रहा था, इसको 2 तारीख को आसाम का चाय मजदूर कम से कम 17 लाख मजदूर हड़ताल में भागीदारी किया
जी,
फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इसको पहले हड़ताल में असम के चाहे मजदूर नहीं आते थे लेकिन इस दफा आया,
लेकिन उनकी आपने शिकायत भी तो सुनी।
जलन हो रहा है, जो जिंदे जीने का लायक उसको वेतन नहीं मिल रहा है
जी। हमारे साथ जो है बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनमें नवल जोशी हैं जो कह रहे हैं कि देश बहुत सी हड़तालें झेल सकता है, कश्मीर में तो महीनों हड़तालें चलती हैं, विभिन्न पार्टियों के बंद और चक्का जाम हम अक्सर देखते आए हैं लेकिन इस देश का मजदूर अब कोई हड़ताल झेलने की हालत में नहीं रह गया है। अभिषेक गौरव हैं जो कह रहे हैं कि भारत के संविधान में बहुत जल्द ही एक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, सवाल सिर्फ मजदूरों का नहीं है। कुछ दिन पहले डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए थे, वहाँ उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोगों की जीवन का क्या होगा। जंग बहादुर सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार निसंदेह सुधार तो कर रही है मगर जनता का नहीं, केवल सेठ साहूकारों का। ये बात बहुत प्रोमिनेंटली आ चुकी है हमारे कार्यक्रम में। और आगे बढ़ने से पहले हम आखिरी श्रोता की आवाज़ सुनते हैं। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं?
हेलो
जी, जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं?
हाँ, मैं हरीश बोल रहा हूँ, गुजरात से। बना
हरीश गुजरात से जी, बताइए हरीश जी।
हाँ नमस्कार सर।
नमस्ते जी, समय कम है, जल्दी बताइए अपनी बात।
जो सब सेंट्रल से और स्टेट लेवल से जो कानून बनता है सर
जी,
वो उसको ये सब टॉप लेवल से बनते हैं
जी,
अंदर जो बॉटम लेवल पे कुछ अमल नहीं हो रहा है।
अच्छा अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि ऊपर तो कानून बन जाता है लेकिन जमीन पर उस पर अमल नहीं होता। आखिरी प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहते हैं कि हड़ताल कितना जायज है?
नहीं, हड़ताल का औचित्य तब है जब सरकारें ना सुने
जी।
जब तक सरकार सुनवाई की प्रक्रिया में है तब तक वार्ता करके विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। आखिरी हथियार का रोज इस्तेमाल, अभी लोगों ने कहा वैलेंटाइन डे की तरह 2 सितंबर हड़ताल डे हो गया, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। औचित्य के आधार पर हड़ताल हमारा अधिकार है, करनी चाहिए हमको
जी। बहुत शुक्रिया तपन जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, क्या आप सहमत हैं?
हर रोज नहीं होता है, 1 साल बाद ये नेशनल लेवल पर हड़ताल हो रहा है, और ये 1 साल के अंदर।
लेकिन आपने खुद कहा कि ये सांकेतिक है,
पहले मंत्रियों ने जो कमिट किया उसका एक बात भी नहीं किया, एक काम भी नहीं किया, और एक दफे भी ट्रेड यूनियनों से वार्तालाप तक नहीं किया। तो ये मजबूरी है जो हम 1 साल के प्रांत में फिर दोबारा हड़ताल में गया, और अभी भी सरकार वही रवैये में चलते रहेगा तो हमारा फिर दोबारा हड़ताल के बात सोचना पड़ेगा, मे नॉट बी वन डे फॉर टू और थ्री डेज।
आपने कहा था कि ये सांकेतिक है और ये आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। सरकार आप लोगों की बात भी सुनेगी और उन मजदूरों की बात भी सुनेगी जो जमीनी स्तर पर इंतजार कर रहे हैं कुछ होने का। कार्यक्रम में अब वक्त नहीं है तो आपसे विदा लेते हैं, घटनाचक्र में फिर मुलाकात होगी। निखिल रंजन को दीजिए अनुमति, नमस्कार।